حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم گرایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ دونوں شہر بالکل تباہ و برباد ہو گئے، اور ایک زمانے تک بلکہ اب تک اس کے اثرات یہ نکلے کہ وہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ معذور اور اب نارمل۔ تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح سے ایٹمی بم نے جاپان کے دو شہروں کو، ہیروشیما اور ناگاساکی کو، بالکل تباہ و برباد کر دیا، اسی طریقے سے جو تکبر کا مرض ہے یہ ہماری دل کی دنیا کو اور دین کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور عرض کہتا ہے کہ تکبر کا مرض کیا ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو چھپانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق بات کسی چیز کے بارے میں معلوم چل گیا کہ حق ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بزرگ عالم تھے، وہ احمد رضا خان کے پاس تشریف لے گئے بریلی ایک دن صبح صبح، اور اس سے جا کر فرمانے لگے کہ دیکھو مناظرے، تصانیف، تقاریر تو بہت ہو چکی، لیکن میں آج صرف تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ سر سے بتاؤ کہ حق کیا ہے، میں اور تم ہیں، تم سر سے بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ بولے حق تو وہی ہے کہ جو آپ لوگ پیش کرتے ہیں۔ پھر کیا ماننے میں کیا چیز ہے، ختم کرو اس قضیے کو، جھگڑے کو۔ تو کہنے لگے کہ بات یہ کہ اب اتنا آگے جا چکا ہوں کہ پیچھے نہیں آ سکتا، اب اظہار کیسے کرے۔ یہ بوجہ تکبر کے۔ اور ادھر ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت کے خلاف لکھی اور ہمارے اور دوسرے کابر کے خلاف احمد رضا خان نے، تو اس کا ایک خاکہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کوئی کتاب آئی کچھ دن، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اس زمانے میں پینائی جا چکی تھی، تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے جو خادم تھے مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم، جو حضرت گنگوہی کے خادم تھے، بہت حضرت کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے، تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے مولوی آیا، سنا ہے مولوی احمد رضا خان نے کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ جی حضرت، فرمایا ارے بھائی ہمیں بھی کچھ سناؤ۔ کہا حضرت وہ تو اس قابل نہیں ہے۔ میں کیوں قابل نہیں ہے بھائی، کہا اس میں تو صرف گالیاں بھری ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سنا دو، شاید کوئی بات، کوئی نقطہ ایسا ہو کہ ہم ہی اپنی بات سے رجوع کر لیں، آپ اندازہ کریں۔ یعنی حق پر ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے پھر بھی اس بات کی یعنی خوف بھی، اور ساتھ میں یہ کہ کوئی اگر اچھی بات ہو تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ تو مولانا یحییٰ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں تو نہیں سنا سکتا، اس میں تو صرف گالیاں بھری ہیں۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کی تواضع تھی، یہی وہ چیز ہے کہ جس نے ان کو بڑا بنایا۔ حدیث شریف میں آتا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، لیکن وہ تواضع اللہ کے لیے ہو، مقصود اس سے بھی उससे भी मकसूद इज्जत और जान हो कि लोग कहें कि हजरत बड़े मुतवाजे हैं। जो बाज लोग के तवाजों का अजीब हाल होता है वो ऐसे हो जाते, कंधे भी कोई कैसे ये, तो ये तवाजो मतलूब और मकसूद नहीं है। जब नहीं है एक कंधे ऐसे कर लिए, गर्दन अजीब अंदाज से, वो एक अजीब ही अंदाज होता है गर्दन को करने का, तो ये जो हैयत बनाना ये मतलूब और मकसूद नहीं है। बल्कि तवाजो की हकीकत तो दिल में होती है, और वो हकीकत ये है कि कोई हक बात है उसको कबूल करना और लोगों को हकीर न समझना। अब एक आदमी ने ऐसे तो यूं कर लिया और ऐसे बिल्कुल नाचीज हकीर फकीर अब्दुल कदीर, और हर एक को हकीर समझता, या अपने को समझता है कि अब मैं मिट गया। मेरे मुर्शिद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसको ये एहसास हो कि मैं मिट गया हूं, फरमाया वो अभी नहीं मिटा। एहसास फनाइयत, ये एहसास फनाइयत होना कि मैं अब फना हो गया हूं, मिट गया हूं, ये अभी नहीं मिटा। असल फनाइयत ये है कि एहसास फनाइयत भी ना रहे, ये भी एहसास ना रहे कि मैं मिट चुका हूं। इसकी मिसाल हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह ने यूं दी, एक आदमी सो रहा है और सोते में बाज मरता ऐसा होता ना, दिमाग चल रहा होता है, सोते हुए भी लगता है कि मैं जाग रहा हूं, या सोते हुए भी ये महसूस हो रहा है कि मैं सो रहा हूं, तो ये भी सो नहीं रहा, इसको सोना नहीं बोलते, बल्कि सोना उसको कहते हैं कि सोने का एहसास भी खत्म हो जाए, और असल सोना तो वह है गधे घोड़े बेच के सोना, कि गधे घोड़े गोया बेच के सोए बेफिक्र ऐसा। तो उसको हमारे बुजुर्गों की इस्तलाह में, तसव्वुफ और तरीकत की इस्तलाह में कहते हैं फनाउल फना, यानी मिटने का एहसास भी मिट जाए कि मैं मिटा हुआ हूं, ये एहसास भी ना हो कि मैं मिटा हुआ हूं और मैं फना हो चुका हूं, ये एहसास भी ना हो, ये वो चीज है। और इसके लिए जो तरीका कार है वो तरीका कार यही है कि बगैर शेख के ये बात नहीं पैदा होती, ये चीज बगैर शेख के नहीं पैदा होती। इसकी मिसाल हजरत वाला हजरत मौलाना शाह राव साहब हरदोई रहमतुल्लाह ने जो दी, हजरत वाला रहमतुल्लाह ने इसको समझाया, मैं देखो शकर जो है चीनी शुगर, शकर जब चाय में डाली जाती है तो खुद नहीं घुलती और खुद नहीं मिटती, कि चाय में शक्कर डाल दी तो खुद नहीं मिटती वो, अगर चाय खूब गर्म हो तो थोड़ी सी शक्कर चंद दाने उसमें घुल जाते हैं, लेकिन जिसको घुलना कहते हैं और मिटना और मिलना ऐसा नहीं होता, शक्कर चाय में मिलती नहीं है। हजरत वाला हरदोई रहमतुल्लाह फरमाया कि चाय में शक्कर को मिलाने के लिए, चीनी को मिलाने के लिए मुर्गी का या कबूतर का पर नहीं इस्तेमाल किया जाता, और फरमाया कि मोमबत्ती से भी नहीं घुलाया जाता, कोई कबूतर के पर मुर्गी का पर साफ कर लिया उससे भी नहीं घुलता, और मोमबत्ती डाली तो वो खुद घुल जाएगी। फरमाया उसके लिए चाहिए होता स्टील का चमचा जो खड़खड़ 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 करता है, फरमाते वो मिटाता है, जब चमचा जो हिलाते हैं ना फिर वो मिटाता है। इसलिए फरमाया कि हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे शेख मरियल नहीं होना चाहिए, अड़ियल होना चाहिए, अड़ियल भी हो और कड़ियल भी हो कि वो मिटाए। सुभान अल्लाह, क्योंकि वो चमचा चलेगा ना तो वो चलेगा तो शक्कर को इधर उधर दरहम बरहम करेगा, इसी दरहम बरहम होने में तो जब तक एक साथ रहेगी नहीं मिटेगी नहीं घुलेगी, जब वो दरहम बरहम होती ना तब मिट जाती है। स्टील का चमचा चाहिए। फरमाया शेख भी ऐसे ही होना चाहिए, मरियल नहीं, अड़ियल भी हो और कड़ियल भी हो, ये दो कि मिटा के छोड़े। और फरमाया कि लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, फरमाया उसका नतीजा ये निकलता है कि वो शक्कर मिटती है, वो शक्कर मिटती है लेकिन चाय को मीठा कर देती है। फरमाते ऐसे ही जिनकी बंदगी जो अपने आप को मिटाते हैं, न सिर्फ ये कि उनकी बंदगी मीठी हो जाती है बल्कि उनके पास के बैठने वालों में भी वो मिठास घुल जाती है। सुभान अल्लाह। फरमाया ये चीज है कि मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको रफ़त और बुलंदी अता फरमाते हैं। और वमन तकब्बरा, और जो तकब्बुर करे, चूंकि बड़ा होना है इसकी जाती सिफत नहीं है, जानबूझकर बड़ा बन रहा है, ये अल्लाह ताला की सिफत है बड़ाई, ये अल्लाह ताला ही के लिए खास है। वलहुल किबरिया, बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए, ज्यादा बड़ा है नहीं, जानबूझकर कर रहा है तो फिर अल्लाह ताला उसको उसकी गर्दन मरोड़ देता है। तकब्बुर का कहते ना गुरूर का सर खाक में जरूर मिलता है, ये बात सुनिए ना कि गुरूर का सर खाक में जरूर मिलता है। जिनकी गर्दनों में सरिया होता है, गर्दनों में सरिया आना ये भी मुहावरा है ना कि जब सरिया हो तो गर्दन झुकती नहीं है, अकड़ी रहती है, या गर्दन में कलफ लगा होता है तो एक दिन उनको भी मिटना पड़ता है। इसलिए जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार कर ले अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाते हैं। और यही वो चीज है कि देखिए सहाबा ने वो इज्जत तवाज़ो इख्तियार की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने को मिटाया, अल्लाह ताला ने कयामत तक उनके लिए क्या शरफ और क्या एजाज रख दिया। यही तवाज़ो जिन अल्लाह वालों ने, जिन औलिया अल्लाह ने, जिन मुसलमानों ने इख्तियार की, इज्जत उन्हीं को मिली। और जो कड़ा जिसने अपनी बात बस जो कह दिया ना बस मैंने कह दिया, ऐसा नहीं। इसलिए तो सर पर कोई बड़ा हो कि कोई तो आदमी हो जो हमें समझा सके, कोई तो आदमी है कि जिसके हम बात माने, जो हमारा कान पकड़े, हमारी गर्दन मरोड़े, कोई तो हो ना कि जिसकी हम बात माने, ताकि गलत बात की हकीकत हम पर खुले और हक हम पर वाजे हो। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि शेख की बात को इनकार मत करो कि जिस नजर से वो देख रहा होता है तो वो नजर तुम्हारे पास नहीं होती। इसलिए अगर ये शेख फरमा दे कि फरमाना तो दूर की बात है, यही हो एहसास मेरे अंदर कि मैं मिटावा नहीं, अल्लाह ताला अपने क्रम से मुझको तवाज़ो नसीब फरमा दे। और ये वो अच्छी सिफत है कि जिस पर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये औलिया अल्लाह को जो शरफ मिलता है ना, वो शरफ इसलिए, ये शरफ इनको ऐसा मिलता है कि फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये शरफ इनको इसलिए मिलता है कि ये अपने आप को कुत्ते से भी अच्छा नहीं समझते, कि ये अपने आप को कुत्ते से भी अच्छा नहीं समझते। एक बुजुर्ग का वाकया, एक पुल था, उस पुल पर था एक वक्त में एक शख्स गुजर सकता था, तो एक कुत्ता एक तरफ से आ रहा था, वो बुजुर्ग भी आ रहे थे, तो पहले बुजुर्ग ख्याल आया कि कुत्ता, इसको मुझे रास्ता देना चाहिए, उनको ख्याल आया कि कुत्ता है पहले इसको मुझे रास्ता देना चाहिए, फिर ख्याल आया ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं तो इससे भी अच्छा नहीं हूं, मैं तो इससे भी बुरा हूं, मेरे आमाल तो इससे भी गए गुजरे, बस एक तरफ को हो गए। तो अल्लाह ताला उस कुत्ते को जबान दी और उस कुत्ते ने उनको उस बुजुर्ग से कहने लगा कि आपकी इसी बात ने आपको इज्जत और शरफ और मकाम अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने कर्म से ये चीज, ये तवाज़ों की जो हकीकत है कि अपने को मिटाना, अपने किसी अमल पर, अपनी किसी चीज पर नजर न रखे, महज नजर सिर्फ अल्लाह पर हो। असल में तवाज़ों की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला पर नजर हो जाए, अल्लाह ताला पर नजर हो जाए। देखिए चांद और सूरज, चांद और सितारे कैसे चमकते हैं ना, लेकिन सूरज की रोशनी के मोहताज है कि नहीं। दादा आज हमारे अंदर कोई कमाल है, कोई इज्जत, कोई चीज मिल रही है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। वरना अगर अल्लाह ताला नजरें फेर ले, नजरें रहमत, नजरें करम, तो हम लोगों का क्या हाल हो। एक साहब आए कहने लगे मैं पक्का नमाजी नमाज पढ़ने वाला। अब हाल ये हो गया कि अजान की आवाज आती और मैं ढीठों की तरह बैठा रहता, उनके अपने अल्फाज कि मैं ढीठों की तरह बैठा रहता, कहा हालांकि मैं पक्का नमाज पढ़ने वाला पक्का नमाजी, लेकिन अब मेरा हाल यह है कि मैं ढीठों की तरह पढ़ा रहता हूं। इस चीज से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर फजल फरमाए, हमारे दिलों को नर्म फरमा दे और अपनी मोहब्बत अपना कुर्ब अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत अपने कुर्ब के काबिल हमारे दिलों को बना दे और जुमला सिफात हमीदा हमें सबको नसीब फरमाए। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।
Yeah, right.